हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 32। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्व अहं न जानि। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। त्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति दिशतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्रीअद्वैतगदाधर शिवासुदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 32। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। यथा ह्यवहितो वहने दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा ह्यवहितो वहने दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा यवहितो वहने दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा ह्यवहितो वहने दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा ह्यवहितो वहने दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा ह्यवहितो वहने दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा ह्यवहितो वहने दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा ह्यवहितो वहने दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। शब्दों का अर्थ देखिए। यथा ह्यवहितो वहनेर, वहनेर कहते हैं अग्नि को, अग्नि। तो यहाँ पर कहते हैं यथा यानी जिस प्रकार, यानी ही के अहवित यानी से युक्त अग्नि किसके अंदर होती है? दारुष, दारुष कहते हैं काष्ठ को, जो लकड़ी होती है ना उसको बोलते दारुष। तो जिस प्रकार दारुष के अंदर या काष्ठ के अंदर अग्नि होती है, एक स्वयोनिषु, एक का मतलब एक, स्वयोनिषु मतलब अपनी योनियों में, उस तरह क्या होता है? नानेव भाति विश्वात्मा, नाना एव यानी अनेक जीवों की तरह, बहुत बहुत अनेक है, असंख्य जीव है संसार में, बहुत सारे जीव हैं। नानेव भाति मतलब प्रकाशित होता है, भाति प्रकाशित होता है, क्या? विश्वात्मा। विश्वात्मा मतलब पूरे विश्व की जो आत्मा, यानी परमात्मा स्वरूप में। तो भगवान जो है वो अनेक जीवों में परमात्मा स्वरूप में प्रकाशित होता है। भूतेषु यानी जितने भी जीव हैं, पहले इसको जितने भी भूतेषु है ना उनको क्या बोला? नानेव इव, नानेव मतलब अनेक जीवात्माएं हैं और भूतेषु मतलब जीव प्राणी जितने, मतलब इसका मतलब ये है जो दिखने में लिविंग बॉडीज हैं वो, और अनेक अनेक असंख्य जो संसार है पूरा संसार उसमें भी, और जीवात्माओं के अंदर परमात्मा के स्वरूप में भगवान का प्रति अंश जो है वो होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि होती है दारुष के अंदर या काष्ठ के अंदर। तो भूतेषु च तथा पुमान, च मतलब तथा, तथा और तथा मतलब उसी तरह, पुमान यानी परम पुरुष। अनुवाद देखिए, परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में, उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि रहती है। समझ में आया? फिर से देखिए, परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे अद्वितीय हैं, वे अनेक योनियों में प्रतीत होते हैं। यानी कि इसमें दो चीजें बता रही हैं कि एक तो भगवान जो है सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं, और उसके बाद में क्या बताया, अनेक योनियों में प्रतीत होती हैं, हालांकि वो अद्वितीय हैं, वो एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे परमात्मा अलग 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 आपके सबके हृदय के अंदर एक अलग अलग परमात्मा होता है, नहीं, एक। यद्यपि वे अद्वितीय हैं, वो कभी भी दो नहीं हो सकते, वो परमात्मा एक ही है, वे अनेक योनियों में प्रतीत होते हैं। वो ऐसा लगता है कि बहुत सारी योनियों में वो आकर प्रतीत हो गए हैं, क्योंकि जितने भी जीव आत्मा है इस संसार में, जितनी भी योनियां हैं, सबके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्ण अंश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उनका अस्तित्व परम अणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। अभी जो वासुदेव, जिसके बारे में हमने 38 में पढ़ा था, सॉरी 28 और 29 में पढ़ा था ना, उसी के विषय में बता रहे हैं आगे कि उन्होंने भौतिक जगत का निर्माण किया, और यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं वही वासुदेव अपने एक पूर्ण अंश के द्वारा संपूर्ण जगत में उनका अस्तित्व परमाणु की ऊर्जा तक, यानी छोटे से छोटा एक एटम भी होता है ना, तो उसमें भी भगवान को ना देखा जा सकता है, यानी कि भगवान को रियलाइज किया जा सकता है, पता चलता है कि इतनी छोटी छोटी। आगे देखो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, पदार्थ अपदार्थ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि छोटे से छोटा एटम भी होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, जो भी होता है, वो अगर कार्य कर रहा है, यानी कि वो अपने कार्य कर रहे हैं ना, तो उसमें आप भगवान के वही परमात्मा रूप का परिणाम है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति कौन दे रहा है। जैसे पहले साइंटिस्ट क्या बोलते थे, साइंटिस्ट कहते थे कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स है ना, उनमें सबसे ज्यादा छोटा जो है वो कौन सा है, एटम है। लेकिन बट आफ्टर 50 ईयर्स साइंटिस्ट से, ओ नो, वी मेड अ मिस्टेक, इट्स नॉट एटम, इट्स इलेक्ट्रॉन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कि है ना, पहले तो बोला एटम है, फिर बोला नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन है या जो भी है, एटम है, प्रोटॉन है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर समझने की बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते, छोटे छोटे जर्रे हैं वो, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के गिर्द क्यों घूमते हैं, यानी कि वो ये क्यों नहीं सोचते, नहीं, उनके अंदर इतनी समझ कहाँ से आई, उनके अंदर इतनी अकल कहाँ से आई कि मुझे अपने ऑर्बिट के गिर्द ही घूमना है। वो ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपनी मर्जी से घूमें, जिधर भी जाना चाहे जाए। उनके अंदर शक्ति है जो उन्हें अपने ऑर्बिट के अंदर घूमने के लिए ना विवश कर देती है, और वो शक्ति कहाँ से आती है, यही यहाँ पर बता रहे हैं कि परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.10 में, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, कि इस प्रकृति का एक एक कण मेरी अध्यक्षता के अनुसार कार्य कर रहा है, तो चाहे छोटे छोटा जर्रा भी है तो उसके अंदर भी परमात्मा स्वरूप को, यहाँ पर शिवपा जी कहते हैं, देखा जा सकता है, यानी कि उसकी शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों से के वाइद्य श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। जो श्लोक में बताया गया है ना, उसकी विधि बता रहे हैं श्लोक प्रभुपाद जी। देखिए श्लोक में क्या कहा गया, यथा ह्यवहितो वहने द्वारुष्वीक स्वयोनिषु, कि हर कोई जानता है कि अग्नि होती है दारुष के अंदर या काष्ठ के अंदर या लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन आपको मैं दिखा दूं अग्नि, ये लकड़ी है लो इसके अंदर अग्नि है, इससे कार्य करो, अग्नि का कार्य करो, लेकिन वो लकड़ी अग्नि का कार्य तब तक नहीं करेगी जब तक कि हम उस परिक्रिया को करके उसमें से अग्नि नहीं निकालेंगे। यानी कि या तो पहले क्या करते थे, दो अग्नियों दो लकड़ियों को ऐसे घिसते थे तो उसमें से अग्नि निकलती, यानी एक प्रोसेस करना पड़ता। अब क्या करते हैं कि हम जैसे लाइटर से उसको जलाते हैं या फिर उसके अंदर तेल डालते हैं फिर जलता है, या फिर कुछ इस तरह, मतलब प्रोसेस करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अग्नि के अंदर लकड़ी है तो बस आप बोलो कि इसके अंदर लकड़ी है, लकड़ी के अंदर अग्नि है तो इसे कार्य कर दो, नहीं, वो कार्य करने से पहले पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी उसके अंदर रखी हुई अग्नि से आप ना लाभान्वित हो सकते हो। उसी तरह यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी मक्खन भी बता रहे कि दूध के अंदर मक्खन होता है, सब जानते हैं कि दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन आप ऐसे तो नहीं कर सकते ये लो दूध इसके अंदर मक्खन भी है आप इसके साथ रोटी खा लो, है ना, मक्खन है बट उसके लिए आपको दूध को पहले जमाना पड़ेगा, उसके बाद जब वो दही बन जाएगा उसको बिलोना पड़ेगा, चरण करना पड़ेगा उसको, उसके बाद उसमें से ये प्रोसेस करने के बाद उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर आप उससे रोटी खाओगे। हाँ, तो बगैर प्रोसेस के ना ही आपको अग्नि नजर आएगी लकड़ी के अंदर और ना ही दूध में से मक्खन निकलेगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या बताया, उसी तरह से प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक अणु के अंदर भी परमात्मा है, लेकिन उनको रियलाइज करने के लिए, उनको साक्षात्कार करने के लिए भी एक प्रोसेस है। और वहां पर क्या प्रोसेस बताया गया, कितना सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वाइद्य श्रवण तथा कीर्तन की समत विधि द्वारा अनुभव किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको भगवान को रियलाइज करना है, भगवान को साक्षात्कार करना है, तो आपको क्या करना है, श्रवण तथा कीर्तन की समत विधि, ये दो प्रोसेस है जिसकी अनुसार आप, जिसके करने के बाद आप भगवान को या परमात्मा को रियलाइज करोगे। भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को कहीं और से लेकर आपके अंदर डाला जाएगा, नहीं, कृष्ण भावना आपके हृदय के अंदर है, कृष्ण प्रेम आपके हृदय के अंदर है, कृष्ण आपके हृदय के अंदर विराजमान है। भगवान स्वयं कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान श्री कृष्ण 18.61 में कहते हैं कि अर्जुन समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हो लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लकड़ी के अंदर भी अग्नि दिखती नहीं है, दूध के अंदर मक्खन निकलता दिखता नहीं है जब तक उसको हम प्रोसेस नहीं करते, उसी तरह भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हुए भी दिखते नहीं है जब तक हम श्रवण और कीर्तन की विधि को अपनाते नहीं है। इसी बात को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों वेद श्रवण और कीर्तन के समत द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांतों जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। जो वेदांत में है, उपनिषद है, जैसे हम गीता उपनिषद पढ़ते हैं तो उनमें भगवान के विषय में इतना अच्छे तरीके से बताया गया है कि जब हम उनको श्रवण करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको अध्ययन करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं जिसके कारण हृदय स्वच्छ होता है, तो हम भगवान को रियलाइज करते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या स्वरूप है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से आप भगवान को बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको श्रवण करने से, उसके उसको पढ़ने से हृदय इतना स्वच्छ हो जाएगा, और यदि आप उस पर श्रद्धा रखोगे तो भगवान की अनुभूति होगी। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। यदि आप भगवान को रियलाइज करना चाहते हो, यदि हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को अनुभव करना चाहते हो, तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं उनको अनुभव करने का केवल एक ही तरीका है, कौन सा? श्रवण करना। भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तभी तो हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, और जब जप करेंगे तो हृदय में परमात्मा आसीन होते हुए हम उनको देख सकेंगे। हमने पढ़ा था ना श्लोक नंबर 12 में, पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया, कि जो भक्ति आप श्रुतगृहीता है, जब जब आप श्रवण करोगे तो आप भगवान को हृदय के अंदर भी और बाहर भी देख सकोगे। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं, तो यही यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि भगवान को यदि आपको अनुभव करना है तो उसका एकमात्र तरीका यही है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। जैसे एक लकड़ी को घिसने से या एक लकड़ी ये प्रोसेस करने से अग्नि दिखती है, अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार हृदय के अंदर दैवी चेतना है, हृदय के अंदर भगवान है, लेकिन वह देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। जब आप किसी शुद्ध भक्त का अनुग्रह हो जाता है, और जब किसी शुद्ध भक्त के द्वारा हम भगवान के लीलाओं के विषय में, भगवान के नाम गुण रूप आदि के विषय में श्रवण करते हैं, तभी हम भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीव आत्मा में कर्ण कुहरों के द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करता है। क्या करते हैं जो गुरु महाराज हैं, क्योंकि जो जीव आत्मा है वो काष्ठ रूप है, ठीक है, उसमें अग्नि है, जिस तरह काष्ठ के अंदर अग्नि होती है उसी तरह जीव के अंदर भगवान है, परमात्मा है, तो वो क्या करते हैं कर्ण कुहरों द्वारा, ये करण कुहर क्या होते हैं कि हमारी कान के द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर, बहुत भगवान के विषय में श्रवण कराते हैं जब, तो आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, फिर आत्म साक्षात्कार होता है, फिर भगवत साक्षात्कार होता है। केवल शुद्ध गुरु से श्रवण करके ये प्रोसेस है भगवत साक्षात्कार करने का। अतएव सुनने की इच्छा से ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाओ तो केवल एक ही इच्छा लेकर जाओ कि मैं भगवान के विषय में श्रवण करना चाहता हूँ। ये नहीं कि गुरु मेरे सर पे हाथ घुमा दो, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक प्रॉब्लम तो उस दिन सॉल्व होगी जब आप आध्यात्मिकता में प्रवेश करोगे, क्योंकि जब तक आप इस देहात्म बुद्धि में होगे तब तक तो संभव ही नहीं है कि आपकी समस्याओं का अंत हो, क्योंकि यह जीवन, मनुष्य जीवन या फिर कोई भी संसार में आए हो आप कष्ट भोगने के लिए, और इसी कष्ट भोगने की जगह यानी बंदी गृह में रहकर आप कैसे ये सोच सकते हो कि मैं सुखी हूँ। तो जब तक आप इस देह आत्मा बुद्धि से ऊपर नहीं उठोगे तब तक कष्टों का निवारण नहीं होगा, और ये देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने का तरीका बता रहे हैं। अतएव सुनने की इच्छा से ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब गुरु महाराज के आदेशों को श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, तो भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है। दैवी अस्तित्व यानी ये देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है और आध्यात्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत ही सुंदर शब्द हैं, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने इस मनुष्य देह की कदर करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पशुत्व तथा मनुष्यत्व का भेद इसी विधि पर निर्भर करता है। मनुष्य ठीक से श्रवण कर सकता है परंतु पशु ऐसा नहीं कर सकते। आपको भगवान ने ये मनुष्य देह दिया है, आप ये मनुष्य देह को कहा जाता है ये सर्व योनियों में सबसे उत्तम योनि है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस उत्तम योनि में हम ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस उत्तम योनि में ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड से तरीके से आहार निद्रा बाय मैथुन का ना भोग कर सके। ये मनुष्य योनि के लिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जानवर इंसान में तो एक ही फर्क है कि जानवर सुन नहीं सकता, जानवर को वो बात सुनने में, वो हमारी बोली नहीं समझता, वो भगवान के विषय में श्रवण कर नहीं सकता है और मनुष्य श्रवण कर सकता है, और इसी श्रवण की विधि से आप अपने हृदय के अंदर परमात्मा को रियलाइज कर सकते हो। तो कितना सौभाग्य है हमारा कि हमें भगवान ने यह मनुष्य देह प्रदान की है जिसमें हमें ये कर्ण, कोई कोई तो देखो मनुष्य भी बनते हैं लेकिन वो है ना बहरे होते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन हमें भगवान ने दो कान दिए हैं जिनसे हम भगवान के विषय में श्रवण कर सकते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हमें भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो भगवान हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। अरे इससे ज्यादा और क्या कृपा करे कृष्णा, भगवान ने मनुष्य देह दिया और उसके आपको एकदम अच्छी इंद्रियां जो है वो इतनी स्वच्छ इंद्रियां दी हैं, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, तो और क्या कृपा करें। अब भगवान की कृपा हो गई कंप्लीट, अब अपनी कृपा करनी है, अपने ऊपर समय निकालना है, भगवान के शब्दों को श्रवण करना, और यही विधि है भगवान को हृदय में रियलाइज करने की। अरे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया या भगवान ने कहा, यथा यवहितो वहनिर दारुश्वक स्वयोनिषु, के हर एक जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होती है उसी प्रकार हर हृदय के अंदर परमात्मा के स्वरूप में भगवान होते हैं। नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान, हर मनुष्य हर जीव के हृदय में होते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि वो हृदय के अंदर बैठ के कार्य क्या करते हैं, सारा दिन बैठे होते काम क्या करते हैं, तो वो काम बताते भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता 13.23 में। भगवान कहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टा अनुमंता च, इस परमात्मा के दो कार्य हैं, वो हृदय के अंदर बैठा हुआ है और एक तो उपदृष्ट करता है, उपदृष्ट माना साक्षी, आप जो भी कार्य कर रहे हो ना तो वो देख रहा होता है कि आप ये कर रहे हो, अच्छा आप ये कर रहे हो, वो देख रहा होता है और नोट करता है, जज करता है और लिख देता है, क्योंकि उसकी परमात्मा के अंदर और अणुआत्मा के अंदर क्या है पता है डिफरेंस, कि वो स्मृति, उसकी स्मृति बहुत तेज है। भगवान कहते हैं ना, वेदा हम सम अतीतानी वर्तमानानी चार्जन भविष्यानी तबूतानी माम तू वेदा कश्चन, मैं सब कुछ, मुझे सब कुछ याद है, बहुने में व्यतीतानी जन्मानी त्वचा तवचार्जन 4.5 में बताते हैं कि आपके और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं सब जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते, तो वो सब जानते हैं और हर जीव ने जो जो किया है वो उसको देख रहे होते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, अनुमति देते हैं, अनुमति देते हैं, और कभी इसका मतलब है जब तक वो अनुमति नहीं देंगे तब तक हम कार्य नहीं करेंगे, लेकिन वो हृदय के अंदर बैठे हैं तो मना भी करते हैं। जिस प्रकार जैसे भागते हैं उनको चार नियम का पालन करना होता है, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग और वाइन विमेन, ये नशा करना, मांसाहार करना, ये सब नहीं करना होता है, लेकिन यदि जब कोई भक्त किसी नियम को तोड़ता है ना, जिस टाइम पर वो नियम को तोड़ रहा होता है तो हृदय से परमात्मा की आवाज आती है, स्टॉप स्टॉप, ऐसा नहीं करना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम भक्त हो तुम मत करो, लेकिन वो हृदय से आपको प्रेरणा दे रहे हैं अंदर, हमें ये रियलाइज हो रहा होता है अपराध करने के समय कि हमें कोई मना कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें इतनी स्वतंत्रता दी है कि वो हम फिर भी अपनी अपनी इच्छा से करते हैं। इच्छा भले हमारी अपनी है लेकिन जब तक हृदय में बैठे हुए परमात्मा की उसको अनुमति नहीं मिलती है तब तक वो कार्य नहीं कर सकते। फिर क्या, फिर परमात्मा जब देखते हैं कि आपकी इच्छा जो है वो मेरी आदेश से ऊपर निकल गई है, यानी कि अब आप इस योग्य नहीं बचे हो कि मेरे आदेश का पालन करो, फिर आपको अनुमति दे देते हैं कि जाओ करो जो करना है करो मरो जाके। फिर क्या होता है, अगले जन्म फिर वही कार्य करता है जीव, और क्योंकि आपके कार्य को उसने देखा है और आपकी इच्छा को उसने जाना है तो क्या करते हैं परमात्मा, उसी के अनुसार आपको नए नए जन्म, नया जन्म मिलता है और नए जन्म में आपको ऐसा ही शरीर प्राप्त होता है। यानी मनुष्य होकर आपने बात नहीं मानी, आपने वही कार्य किए जो कि जानवर करता है, आहार, खाने की इच्छा कि खाऊं 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 तो हाथी बना देंगे कि जाओ खाओ, खाने की इच्छा है ना तो कुत्ता बना देंगे, सुअर बना देंगे कि जाओ। अगर आपको खाने का इतना ही शौक है तो जाके विष्ठा भी खाओ, सुअर जो है वो विष्ठा खाता है। मनुष्य आजकल नहीं देखता कि मुझे यहाँ से खाना चाहिए यहाँ से नहीं खाना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और वो पता भी चलता है कभी कभी कि इसके अंदर इतनी गंदी इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं और फिर भी वो खा लेता है। तो बोला ठीक है, तुमको अगर खाने का इतना शौक है तो फिर मनुष्य बनकर खाने की क्या जरूरत है, कुत्ता बन जाओ सुअर बन जाओ तो फिर विष्ठा भी खाओ मजे से, कोई आपको कोई है ना पाबंदी नहीं है, इंग्रेडिएंट्स देखने की जरूरत नहीं है, जो जो लिखा भी नहीं है ऐसे खा लो, गंदा मल खा लो जो भी खाना है, तो ऐसा ही शरीर मिलता है। और अगर आपको अपने जिस्म की बहुत नुमाइश करने का शौक है, आधे पौने कपड़े पहनने का शौक है तो ठीक है, आपको मनुष्य बनकर ये कार्य करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को शिष्टाचार के साथ रहना चाहिए, मनुष्य को अपने शरीर की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें इच्छा है तो ठीक है, वृक्ष बन जाओ। हृदय के अंदर परमात्मा आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको शरीर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उठता ही है कि भगवान कहते हैं पितामह जगत हो, मैं पिता हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ, तो क्या कोई पिता माता इतना करेंगे? मतलब अगर कोई बच्चा गलत चाहता है, कोई गलत चीज चाहता है, तो क्या माता पिता उसको इतना अच्छे आसानी से अप्रूव करेंगे कि ठीक है हाँ तुम्हें दिल कर रहा है तो जाओ करो, तुम्हें मैं ऐसी सुविधा प्रदान करता हूँ? कभी नहीं करेंगे बच्चे, बल्कि माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को डांटेंगे मारेंगे किसी भी तरह से रोकेंगे कि नहीं आप ये कार्य नहीं करो। लेकिन यदि जीव आत्मा भगवान, जो भगवान का सनातन अंश है और भगवान इसको अपनी संतान कहता है, तो फिर भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस संसार में उसे क्यों भेजा, जबकि भगवान स्वयं जानते हैं कि ये संसार दुखमयी है। ये संसार, भगवान स्वयं कहते हैं दुःखालयम् अशाश्वतम्, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यह संसार दुखमयी है, तो फिर भगवान ने ऐसा किया ही क्यों, भगवान ने ऐसा दुखालय संसार भेजा ही क्यों हमारे इस संतान को? क्या एक बच्चे को हम किसी ऐसी जगह पर भेजना चाहेंगे जहाँ पर उसे केवल कष्ट ही कष्ट मिलेंगे, किसी भी तरह से उसे रोकेंगे कि नहीं आप नहीं जा सकते हो? तो इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आचार्य गण देते हैं कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा हो और अपने पेरेंट्स को कहे कि पापा आज ना कार मैं ड्राइव करके चलूंगा, ये जो कार है ना मैं ड्राइव करके चलूंगा, बस मैं ही करूंगा। लेकिन माता पिता क्योंकि अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार ड्राइव करने दे देंगे, क्योंकि अभी तो उसको कार ड्राइव करना आता ही नहीं है, ना वो ना ब्रेक लगा सकता है, ना स्टीयरिंग पकड़ सकता है और ना ही चला सकता है गाड़ी को, तो फिर उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, इसलिए तो उसको नहीं चलाने देंगे। बोलेंगे नहीं बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कार ड्राइव करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चा बहुत रोता है, बहुत शोर करता है और नहीं मुझे फिर भी कार ही चलानी है, मुझे कार चलानी है, मैं ना चलाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा जिद करता है। तो पेरेंट्स क्योंकि उससे बहुत 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 प्रेम करते ना, तो फिर क्या बोलते हैं, ओके जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, अभी आप मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको अभी गाड़ी चलाते हो। फिर क्या करते हैं बच्चे को, फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को एक कैसीनो लेकर जाते हैं, जहाँ पर बच्चों का प्लेलैंड होता है ना, वहाँ पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर एक मशीन में एक कॉइन डालते हैं और कॉइन डाल के बोलते हैं देखो बेटा अब आपकी कार स्टार्ट हो रही है, बूम बूम कार को चलाओ, जोर से चलाओ, देखो देखो वहां से दूसरी गाड़ी आ रही है, यहाँ से चलाओ, यहाँ से जोर से, उसको टक्कर नहीं लगनी चाहिए। फिर और बच्चे को वहां पर गूगल्स मिलते हैं, हेलमेट पहनते हैं, दिख रहा है कि वहां से वो ग्राफिक दिखाते हैं कि ट्रक आ रहा था वहां से, फिर बच्चे ने वहां से उसको जोर से चलाया, वहां से ब्रेक मारा, ये किया वो किया, फिर पापा को बोलता है लुक डैड लुक मैंने कितना अच्छे से किया, देखो मैंने फिर वहां से ट्रक आया था, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमाया और ऐसे ब्रेक लगाया, देखो मैंने कितना अच्छा कार ड्राइव किया। डैड से वाओ वेरी गुड, रियली रियली नाउ यू आर एक्सपर्ट ड्राइवर, अब तो आप बहुत अच्छा ड्राइव कर लेते हो। और चाइल्ड से थैंक यू पापा, मैंने बहुत अच्छा किया ना। तो वो छोटा बच्चा यही सोचता है कि आज मैंने कार ड्राइव की, मैंने कितना अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन पिताजी जानते हैं कि ये सब एक खेल था, एक फरेब था, एक धोखा था। और ये सब खेल क्यों रचा गया? क्योंकि पिताजी प्रेम करते हैं, पिताजी प्रेम करते हैं, और उसको, उस प्रेम को पूरा करने के लिए, उस प्रेम के आदान प्रदान को करने के लिए उसने एक ऐसी नाटक वाली कार उसको लेकर दी, उसी में उसने अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया। उसी प्रकार से जीव आत्मा जब भगवान के धाम में होती है तो वो क्या करती है? इच्छा करती है कि मैं यहाँ पर सामित्व जताऊं, मैं यहाँ पर अपनी इच्छाओं को पूरा करूं। लेकिन भगवान कहता है, नहीं बेटा, अगर आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर तुम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो तुम अपने इच्छाओं को पूरा करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह तुम्हें लेकर जाता हूँ, वहां पर जाकर तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करो। उसी के लिए भगवान ने यह पूरा भौतिक जगत की रचना की है। ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है, कुछ भी सत्य नहीं है। वो जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है उसका ही प्रतिबिंब है, लेकिन भगवान ने इसकी रचना की है, भौतिक जगत की रचना की है, केवल जीव मात्र के इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो जब यहाँ पर जीव आता है तो वो यही करता है, बहुत इच्छाएं पूरी करता है, ये करता है, वो करता है, जैसे वो बच्चा कैसे उसको बहुत इंजॉय करने की कोशिश करता है, उसको करता है करता है करता है। लेकिन जब वही बच्चा व्हेन द चाइल्ड ग्रो अप सेड दैट आई वाज सो स्टूपिड ना, कि मैंने कैसे वो किया था, जब मैं छोटा होता था तब मैं ऐसी इच्छाएं करता था। अच्छा, आपने, थैंक यू सो मच, आपने उस टाइम पर मुझे कार ड्राइव करने नहीं दिया होता। अगर कार ड्राइव करता मैं सच्ची वाली, तब तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं अभी तो मर गया होता। उसी तरह से जब जीव आत्मा को ज्ञान होता है, गुरु महाराज के आश्रम में रहकर जब उसे पता चलता है कि ये सब तो भौतिक जगत सिर्फ धोखा है, नाटक है, इसमें हम आए हैं केवल इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन वास्तविक में हम क्या हैं? भगवान के दास हैं। अपनी रियल शनाख्त के बारे में, अपनी रियल स्थिति के विषय में जब जीव आत्मा को ज्ञान होता है तो वो अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को रियलाइज करता है, और उसे ये पता चलता है कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। तो लेकिन जब तक जीव आत्मा को यह ज्ञान गुरु महाराज के द्वारा नहीं मिलता है, तब तक श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो उसे तो जानवर ही समझना चाहिए। पशुत्व और मनुष्य के अंदर भेद यही है कि वो श्रवण नहीं कर सकते, वो श्रवण की विधि को नहीं अपना सकते, और मनुष्य गुरु महाराज के आदेशानुसार श्रवण करता है और अपने इस वास्तविक स्थिति को पहुंचता है कि मैं भगवान का दास हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।